ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन से बात की और ईरान तथा इसराइल के बीच हाल ही में हुए तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति पेजिशकिन ने प्रधानमंत्री मोदी को विस्तार से जानकारी दी और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत शांति और मानवता के साथ है। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय की सुरक्षित स्वदेश वापसी में निरंतर समर्थन के लिए राष्ट्रपति पेजिशकिन को धन्यवाद भी दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमरीकी सेना के हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुनिया भर के नेता संयम बरतने और कूटनीतिक वार्ता की पैरवी कर रहे हैं। साथ ही यह भी चिंता जताई जा रही है कि यह संघर्ष पश्चिम एशिया में व्यापक रूप ले सकता है। अमरीका द्वारा ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं फोर्डो, नटांज और इस्फान पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक की। बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मध्य पूर्व में तनाव को कम करने के लिए कार्य करने का आग्रह किया। श्री गुटेरेस ने कहा कि हमें लड़ाई को रोकने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गंभीर निरंतर वार्ता पर लौटने के लिए तुरंत निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने भी वीडियो लिंक के माध्यम से सुरक्षा परिषद को संबोधित किया। राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान के विशाल इस्फहान परमाणु परिसर में समृद्ध सामग्री के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली सुरंगों के प्रवेश द्वारों पर हमला किया गया है, जबकि नतांज में ईंधन संवर्धन संयंत्र पर फिर से हमला किया गया। इसराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डेनन ने एक बयान में कहा कि अमरीका और इसराइल विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए प्रशंसा का आभार व्यक्त करने के पात्र हैं। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने घोषणा की है कि उनका देश ईरान के साथ नहीं बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम के साथ युद्ध कर रहा है। यह घोषणा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के एक दिन बाद आई है। ईरान की संसद ने उसके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल समुद्री जहाजों के प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद लेगी। इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार पिछले 2 सप्ताह से पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि सरकार भारतीय नागरिकों को ईंधन की आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि वे आज सुबह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात करेंगे। तुर्की के इस्तांबुल में कल एक सम्मेलन के दौरान एक रूसी संवाददाता के सवाल पर अराग्ची ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देश राजनीतिक साझेदार हैं और हर स्थिति में एक दूसरे से परामर्श करते हैं। तनाव के बीच ईरान के मशाद से कल एक विशेष विमान 311 भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत सभी अभी तक ईरान से 1428 भारतीय नागरिक सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। इस प्रयास के लिए लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उधर इसराइल के हवाई क्षेत्र बंद होने और वाणिज्यिक उड़ानें निलंबित होने के कारण इसराइल और जॉर्डन में भी भारतीय मिशनों ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत कल पहले जत्थे में 160 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि एक सभ्य समाज में हिंसा और लाल आतंक का कोई स्थान नहीं है, इसलिए सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। गृहमंत्री ने कल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी परिसर के भूमि पूजन समारोह के दौरान मार्च 2026 तक माओवाद को खत्म करने का सरकार का संकल्प दोहराया। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम की कुल बढ़त 96 रन हो गई है। स्टंप्स तक कप्तान शुभमन गिल नाबाद 6 रन और केएल राहुल नाबाद 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में आज तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।